वैसे तो हमने राजयोग के प्रथम सत्र में स्वयं को जाना, परमपिता परमात्मा का परिचय प्राप्त किया, राजयोग का आधार एवं विधि भी हमने जाना, और अभी जिस सृष्टि में हम रहते हैं और जिन चीजों को हम देखते हैं, ये सृष्टि कैसे चल रहा है, सृष्टि की आदि कैसे हुई, अंत कैसे होगा, ये सारे रहस्य जो स्वयं भगवान ने बताया है, काल चक्र का रहस्य, जिसे समझने से मनुष्य जिस विषय को लेकर परेशान हो जाता है, तनाव भय युक्त जीवन में ऐसा महसूस करता है कि आखिर भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। आज के सत्र में आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, जो खुदा ने बताया सृष्टि चक्र का रहस्य। इस रहस्य को समझने से जीवन के हर प्रॉब्लम से आप मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये सृष्टि उस परम कलाकार की कला है, इसमें हर क्षण में छुपा है कि इसमें भला है। सृष्टि का हर पल तुम्हें शक्तिशाली बनाना चाहता है, जो अदृश्य है वो तुम्हें दिखाना चाहता है। और इस सारे सृष्टि में अभी संगम युग का समय चल रहा है, और इस समय में कैसे स्वयं भगवान आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, वो हम आज इस सत्र में जानेंगे। इसलिए कहा जाता है समय नूर को भी बेनूर बना देता है, समय हुजूर को भी फकीर बना देता है, समय की कद्र कर हे बंदे, समय कोयले को भी कोहिनूर बना देता है, समय कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। अभी हम आदरणीय गीता दीदी से सुनेंगे काल चक्र का रहस्य इस विषय पर।
बहुत सुंदर विषय पर हम समझने जा रहे हैं सृष्टि का चक्र, समय का चक्र कैसे चलता है। इस संसार चक्र में कौन कौन से युग आते हैं, हर युग में हम मनुष्य आत्माओं की क्या स्थिति होती है, और अब कौन सा समय चल रहा है, उस अनुसार हमें क्या करना है। सृष्टि का खेल कैसे बना है, तो जितना स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को पहचानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इस सृष्टि खेल को यथार्थ रूप से समझना, तभी हम अपने जीवन का सही लक्ष्य बना सकते हैं और जीवन जीने का सही मार्ग चुन सकते हैं। तो सृष्टि का खेल प्रकृति और पुरुष का बना हुआ खेल है। प्रकृति माना क्या, पुरुष माना क्या, हम ये समझते रहे कि ये नर और नारी का, स्त्री और पुरुष का खेल है। परंतु प्रथम लेसन में ही आपने इस सत्य को समझ लिया है कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो यहां प्रकृति का अर्थ क्या है, पुरुष का अर्थ क्या है? प्रकृति माना पांच तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। प्रकृति के ये पंच महाभूत है, ये पांचों ही तत्व अनादि और अविनाशी हैं, न उसकी उत्पत्ति होती है न अंत होता है, ये अनादि अविनाशी है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो केवल रूपांतरित होती रहती है। पुरुष माना चैतन्य शक्ति आत्मा, आत्मा को पुरुष कहते हैं। शरीर को नव द्वार वाली पूरी नगरी कहते हैं। गीता में ये कंपैरिजन बताया गया है कि शरीर नौ द्वार वाली पुरी है, आत्मा उसमें रहने वाला पुरुष है। आत्मा भी अनादि अविनाशी है, इसलिए आत्मा न जन्मती है न मरती है। आत्मा शक्ति है, अनादि अविनाशी है। आत्मा शरीर धारण करती है, उसे जन्म कहते। आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसे मृत्यु कहते हैं। तो शरीर का जन्म, बाल, युवा, वृद्ध अवस्थाएं होती है, शरीर मरता है। आत्मा अनादि अविनाशी है, इसलिए गीता में दूसरे अध्याय में आत्मा के संबंध में अनेक श्लोक हैं। न जायते न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्मती है न मरती है, शरीर के मरने पर भी आत्मा मरती नहीं है। ये भी एक श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है, स्थूल नहीं है, आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं न पानी भिगो सकता है न पवन सुखा सकती है न अग्नि जला सकती है। प्रकृति के पांच तत्वों से अलग आत्मा चैतन्य है, शक्ति है। तो देखिए, प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, चैतन्य शक्ति आत्मा भी अनादि अविनाशी है। अंडरस्टूड है पुरुष और प्रकृति का बना हुआ ये संसार का खेल भी अनादि अविनाशी है। अब प्रकृति उसमें क्या कार्य करती है, आत्मा पुरुष का कार्य क्या है और परमात्मा का इस संसार चक्र में रोल क्या है। तीनों को यथार्थ रूप से जानना है ताकि इस वर्ल्ड ड्रामा में हमारी जिम्मेवारी क्या है, परमात्मा क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सब बातें हम यथार्थ रूप से समझ सकते हैं। संसार में तीन कार्य अनादि रूप से चलते रहते हैं, स्थापना पालना विनाश, सर्जन विसर्जन और उसका नियमन। प्रकृति स्वयं स्थापना पालना विनाश का कार्य कैसे करती है? प्रकृति स्वयं अपनी चेतना शक्ति से, प्राकृतिक चेतना शक्ति से खुद ही स्थापना पालना विनाश का कार्य करती है। चित्र में देखिए, बीज जमीन पर गिरते हैं, आप जानते हैं पेड़ पर फल आते हैं, पकते हैं और उसके बीज जमीन पर गिरते रहते हैं। पंछियों के द्वारा, पवन के द्वारा वो बीज उड़कर अन्य स्थानों पर भी जाते रहते हैं, वो स्थापना का कार्य हुआ। वही बीज जमीन मिट्टी से मिलकर प्रकृति के पांच तत्वों की पालना पाकर सूर्य की धूप हवा पानी का सहयोग पाकर वही बीज अंकुरित तो होता है, पौधा पनपता है। ये प्रकृति के द्वारा पालना का कार्य हुआ। लेकिन वही प्रकृति के पांचों ही तत्व जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो विनाश का भी कार्य करते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं जिसको हम कहते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, बाढ़ आती है, अकाल होते हैं, हवा के तूफान चलते हैं, इस प्रकार प्रकृति विनाश का भी कार्य करती है। अब समझने की बात यह है कि प्रकृति जो भी स्थापना पालना विनाश का कार्य करती है वो स्वयं की प्राकृतिक शक्ति से करते हैं। इसमें कोई परमात्मा का हाथ नहीं है। विज्ञान के विकास के पहले काफी अंधश्रद्धा समाज में थी। लोग मानते थे सूर्य भी भगवान चमकाते हैं, बिजली भी भगवान चमकाते हैं, बरसात भी भगवान ही बरसाते हैं। इतने तक लोग मानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन लोग सूर्य को भगवान, चंद्र को देवता और उसकी पूजा करते रहे, गंगा को पतित पावनी समझते, तुलसी पीपल की पूजा करते रहते। पर जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, काफी अंधश्रद्धा अब खत्म हुई है। अब हम जानते हैं कि सूर्य कैसे रोशनी और ऊर्जा देता है, बिजली कैसे चमकती है, बरसात कैसे बरसती है। इसमें परमात्मा के इच्छा की कोई बात नहीं। अगर परमात्मा की इच्छा अनुसार ही प्रकृति कार्य करती तो प्रकृति उपद्रवी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा सुखदाता है, दयालु है, कृपालु है, कल्याणकारी है। अगर परमात्मा की इच्छा से, प्रेरणा से ही प्रकृति कार्य करती तो प्रकृति सुख देने वाली होनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं प्रकृति भी उपद्रवी बन गई है, प्रकृति के द्वारा भी महाविनाश का कार्य हो रहा है। इसलिए वास्तव में प्रकृति स्वयं की शक्ति से कार्य करती है, उसमें परमात्मा का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। मनुष्यात्मा के द्वारा इस संसार खेल में एक प्रकृति के द्वारा स्थापना पालना विनाश का कार्य होता है, दूसरा चैतन्य शक्ति हम आत्माओं के द्वारा, मनुष्य आत्माओं के द्वारा स्थापना पालना विनाश का कार्य होता है। वो कैसे? चित्र में देखिए कि मनुष्य सोचता है, प्लानिंग करता है, नए नए आइडियाज निकालता है, योजनाएं बनाता है, ये स्थापना का कार्य। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, इसको बने हुए 18 वर्ष हुए। 18 वर्षों के कुछ महीनों पूर्व ये हॉल कहां था? व्यक्ति के मन में आइडिया के रूप में था कि ऐसा हॉल हमें बनाना होगा। वो आइडिया प्लान प्रैक्टिकल में लाते हैं, वो पालना का कार्य हुआ। और वही मनुष्य आत्माएं जब पतित बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, विशेष बन जाते हैं, तो वो महाविनाश का भी कार्य करते हैं। लड़ाई झगड़ा मारामारी खून युद्ध के द्वारा विनाश का कार्य करते हैं। तो ये मनुष्य आत्माओं के द्वारा स्थापना पालना विनाश का कार्य होता है। अब लोग ऐसा मानते रहे हैं कि मनुष्य आत्मा जो भी कार्य करती है ईश्वर की प्रेरणा से करती है। जैसा कई बार कोई गुस्से में आकर, वैर और द्वेष में आकर उसे कोई गलत कार्य करने का विचार आ जाता है, फिर हमें अंदर से होता है कि हमें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। उसके लिए लोग अक्सर ये कहते हैं कि अंदर बैठा हुआ भगवान हमें पाप न करने के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन आप सोचिए कि कई बार इंसान इस अंतः प्रेरणा को दबाकर भी गलत काम कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? अंदर से आवाज आती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इस इनर वॉइस को भी दबाकर व्यक्ति गलत काम कर लेता है। तो सोचिए, अगर अंतः प्रेरणा अंदर बैठा हुआ भगवान पाप न करने की प्रेरणा देता है, तो वो प्रेरणा इतनी कमजोर क्यों है जो इंसान उसको दबा कर भी गलत काम कर लेता है। फिर तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य जो सोचता है, क्या वो गलत ही सोचता है? अच्छा करने के विचार सिर्फ परमात्मा की प्रेरणा से आते हैं? अगर इंसान गलत ही सोचता है तो गलत ही करता तो दुख ही पाता ना। पर आज हम मनुष्य आत्माएं सुख भी पाते हैं, मीन्स हम अच्छा भी करते हैं, मीन्स हम अच्छा भी सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म करने की प्रेरणा सिर्फ परमात्मा से आती है। मनुष्य आत्मा अच्छा बुरा जो कुछ करती है वो खुद के संस्कारों की प्रेरणा अनुसार करती है, प्रबलता अनुसार करती है। जब हमारे में अच्छे संस्कार शक्तिशाली हैं, तो कैसे भी गंदे वातावरण में रहते हुए भी इंसान गलत नहीं करता है। वो कमल फूल समान न्यारा प्यारा रह सकता है। और जब हमारे अंदर खोटे संस्कार शक्तिशाली हैं, तो अच्छे घर में जन्म लेने पर भी वो गंदे काम करते। तो सत्यता ये है कि मनुष्य आत्मा जो भी कर्म करती है वो खुद के संस्कारों की प्रबलता अनुसार करती है। इस प्रकार मनुष्य आत्माएं खुद ही अपने कर्मों की जिम्मेवार है, इसलिए वो खुद ही उनके फल भोगने के लिए बाध्य भी है। अब सत्यता ये है कि हम मनुष्य आत्माओं के विचार वाणी कर्म व्यवहार हमारे मन वचन कर्म का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। देखिए, समस्त प्राणी जगत में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है। बाकी सभी प्राणी पंछी और प्रकृति जगत मनुष्यात्मा को फॉलो करते। सोचिए, इस संसार के खेल में हम मनुष्यात्माओं की कितनी बड़ी जिम्मेवारी। हमारे विचार वाइब्रेशंस वाणी व्यवहार का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। मैं कई उदाहरणों से ये बात आपको बताना चाहूंगी। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ये उल्लेख है कि जब राम राज्य था तो शेर और गाय भी, बाघ और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे। मतलब हम मनुष्य आत्माएं जब देवता थे, दिव्य गुणों से संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र थे, तो प्रकृति जगत भी सात्विक था। जब हम अपने जीवन के नियम, संयम, मर्यादाएं तोड़ते हैं, तो ये पशु पंछी, प्रकृति जगत भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहते हैं, वे भी उपद्रवी बन जाते हैं। तो हमारा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। ये भी हमारे शास्त्रों में गाया हुआ है कि द्वापर युग के प्राचीन ऋषि मुनि घने जंगलों के बीच आश्रम, गुरुकुल बनाकर रहते थे और उनकी तपस्या का प्रभाव इतना फैलता था जो जंगल के हिंसक प्राणी, बाघ, चीते, शेर जैसे हिंसक प्राणी भी आश्रम में पालतू प्राणी की तरह आकर बैठ जाते थे। माना जब हमारी वृत्ति, स्मृति, प्रवृत्ति शुद्ध और सकारात्मक, शक्तिशाली होती है, तो पशुओं की हिंसक वृत्ति का भी शमन हो जाता है, वे भी सात्विक बन जाते हैं। एक और काव्य, हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमें आता था, गुजरात के एक प्रसिद्ध कवि कलापी हुए, उनका ये काव्य था कि एक राजा था जो बहुत प्रजावत्सल और प्रजा की सुखाकारी के कार्य करता था। वो वेश बदल कर नगर चर्चा करने निकलता था और प्रजा के हाल का समाचार लेता था। एक बार वो वेश बदल कर एक गरीब किसान माता के खेत में जाता है, जहां बहुत सुंदर गन्ने की खेती, फसल उगी हुई नजर आती है। वो माता भी आए हुए अतिथि को अतिथि समझ, जो था राजा उससे अतिथि समझ, गन्ना काटकर रस निकालकर ग्लास भर कर गन्ने का रस पीने के लिए देती है। रस बहुत ज्यादा निकलता है, मीठा होता है। राजा पीकर प्रसन्न होता है और मन ही मन हर्षाता है कि मेरे राज्य में इतनी अच्छी गन्ने की फसल होती है। वहां से लौटते हुए उससे मन में विचार आता है कि इतनी अच्छी गन्ने की फसल होती है, पर इससे राज्य कोष को क्या फायदा है, सोचता है, उनकी बुद्धि बिगड़ती है, वो सोचता है कि इस पर तो टैक्स डालना चाहिए, वो टैक्स डालता है, साल दो साल के बाद फिर वो इसी किसान माता के खेत में आता है, इस बार भी माता गन्ना काट रस निकालती है पर थोड़ा सा निकलता है और इतना मीठा नहीं होता है, तो वो राजा जो मुसाफिर के वेश में आता है वो कहता है इतना ही रस क्यों निकला। तो वो किसान माता कहती है कि दयाहीन हुआ नृप, रसहीन हुई धरा, जब से हमारा राजा दयाहीन हो गया तब से ये धरा भी रसहीन हो गई। कहने का भावार्थ ये बहुत सूक्ष्म है कि हमारे मन वचन कर्म का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। हमारे देश के भी वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस जी ने ये सिद्ध करके बताया था कि अगर हम अपने बाग बगीचों में पौधों के आगे सुंदर सात्विक गीत संगीत बजाते हैं तो उन पौधों का विकास बहुत अच्छा होता है। इस बात को ब्रह्मा कुमारीज की रूरल डेवलपमेंट विंग ने भी प्रयोग करके देखी है। हमारे राजयोगी भाई बहने विशेषकर क्योंकि लगभग 30,000 जितने क्लासेस गांव में चलते हैं, हमारे गांव की गीता पाठशाला के राजयोगी भाई बहने अपने अपने खेतों में ग्रुप बनाकर जाते हैं, अलग अलग बैठकर फसल के बीच योग करते हैं और वाइब्रेशंस फैलाते हैं। बीज बोने के सिस्टम से लेकर फसल उगकर तैयार होती है और काटते हैं, माना खेती के हर प्रोसेस में योग ऐड करते हैं, योग के वाइब्रेशंस देते हैं और आप मानेंगे नहीं उसका इतना अच्छा परिणाम मिला है कि वो फसल क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी उगती है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन दो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस पर साइंटिफिक डाटा कलेक्ट किया। गुजरात की दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड की पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने इस बात के साइंटिफिक रिजल्ट लिए और उन्होंने साइंटिफिकली अनाउंस किया है कि यौगिक खेती की पद्धति भी अनाज को सात्विक शुद्ध और बहुत अच्छा उगाने में बहुत मदद करते हैं। कहने का भावार हमारे वाइब्रेशंस पेड़ पौधों पर भी असर करते हैं। एक और प्रोग्राम इस विद्यालय के द्वारा हुआ था लंदन के अल्बर्ट हॉल में। ये एक प्रसिद्ध यूरी गैलर नाम के साइकेट्रिस्ट हैं जो अपने साइकिक पावर, अपने थॉट पावर से चम्मच बेंड कर देते हैं, चाबियां बेंड करते हैं, चलती घड़ियां रोककर बताते हैं। तो ये भ्राता यूरी गैलर और हमारी दादी जानकी जी का एक प्रोग्राम लंदन में हुआ था। उस समय भी यूरी गैलर ने ये प्रयोग करके दिखाया था। उन्होंने हाथ में अनाज के बीज लिए थे और थॉट पावर से, दृष्टि की शक्ति से हाथ में बीज को अंकुरित करके बताया। ये है विचारों का प्रभाव। यही कारण है हमारी संस्कृति, हमारे बुजुर्ग हमें सदा सिखाते रहे हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर भोजन बनाते समय मन के विचारों का प्रभाव अन्न पर पड़ता है, उस अन्न को जो खाता है उसके मन पर उसका प्रभाव पहुंचता है। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। क्यों माँ के हाथ का बना हुआ भोजन होटल में बिजनेस पर्पस से बना भोजन और परमात्मा की याद में बनाया हुआ प्रभु प्रसाद, तीनों में अंतर क्यों है? है तो भोजन ही, पर उस समय जो मन में वाइब्रेशंस थॉट्स होते हैं उसका अन्न पर प्रभाव पड़ता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम मनुष्यत्माओं का प्रभाव प्रकृति, पशु, पंछी, जगत पर पड़ता है। और इस प्रकार जब हम मनुष्यत्माएं पवित्र हैं, सत्य है, तो प्रकृति, पशु, पंछी, जगत भी पवित्र, सत्य, शुद्ध होते हैं। जब हम मनुष्य आत्माएं कलियुग के अंत समय पतित बन जाते हैं, हमारे मन वचन कर्म के प्रभाव से प्रकृति, पशु, पंछी, जगत भी तमो प्रधान बन जाते हैं। और इस प्रकार कलियुग के अंत समय जब प्रकृति और पुरुष, मनुष्य आत्माएं दोनों पतित बन जाते हैं, तब स्वयं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव, वही साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में दिव्य प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिस ज्ञान और योग से हमें मनुष्य से देवता नर श्री नारायण, नारी श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। और हम मनुष्य आत्माएं जब पवित्र योगी दिव्य बनते हैं, तो हमारे कर्मों के प्रभाव से क्रमशः पशु, पंछी, प्रकृति, जगत भी बदलते हैं, संसार स्वर्ग बनता है। इसलिए हम मनुष्य आत्माओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर वर्तमान विश्व को हम पुनः सुखमय बेहतर संसार बनाना चाहते हैं, हमें उसकी शुरुआत स्वयं से करनी है। एक अनाउंसमेंट है, तेलुगु लैंग्वेज में ट्रांसलेशन इज नाउ अवेलेबल ऑन फ्रीक्वेंसी नंबर 89.5। तेलुगु ट्रांसलेशन इज अवेलेबल ऑन फ्रीक्वेंसी 89.5। सृष्टि का ये चक्र अनादि अविनाशी रूप से चलता है। कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा, ओम शांति। अक्सर लोग सोचते हैं कि सृष्टि का ये संसार का खेल कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा। इसका एक ही आंसर है कि ये अनादि अविनाशी है। प्रकृति जगत के हरेक साइकिल, छोटे मोटे हरेक चक्र अनादि अविनाशी। स्क्रीन पर देखिए, दिन और रात का चक्र अनादि काल से चलता ही आ रहा है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये डे एंड नाइट का अनादि अविनाशी चक्र है। कितनी भी घोर अंधेरी अमावस की रात होती है, फिर भी सुबह उगती ही है, क्योंकि ये साइक्लिकल ऑर्डर है। मौसम का साइकिल, गर्मी होती है, बरसात होती है, फिर सर्दी हो जाती है। तो ये गर्मी, वर्षा, सर्दी का, ये मौसम का भी एक साइकिल है जो चलता ही आ रहा है। लाइफ एंड डेथ का साइकिल, जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु का, ये अनादि अविनाशी चक्र है। बरसात का साइकिल देखिए, साइक्लिकल ऑर्डर से ही चलता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी भाप होता है, ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर वो बादल बरसते हैं, नदी झरने बहते हैं, फिर समुद्र में जाकर मिलते हैं। ये है बरसात का साइकिल। तो प्रकृति जगत के छोटे छोटे हर साइकिल अनादि अविनाशी रूप से चलते हैं। सेम द होल वर्ल्ड साइकिल भी अनादि अविनाशी रूप से चलता ही आ रहा है। इसलिए हमें याद है बचपन में, आप सबने भी ऐसे पूछा होगा, आपस में एक दोस्त से पूछते थे कि बताओ मुर्गी पहले या अंडा पहले, फल पहले या बीज पहले। इट इज साइकिल, इसका कोई आंसर नहीं है कौन पहले, क्योंकि ये साइक्लिकल ऑर्डर में चलता है। हर चक्र का अपना निश्चित टाइम ड्यूरेशन है, हर चक्र की अपनी एक समय अवधि है। दिन और रात का चक्र 24 घंटे का है, सप्ताह का साइकिल 7 दिन का है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगेन संडे मंडे ट्यूसडे, ये अपने आप रिपीट होता है। वर्ष का साइकिल देखिए 12 मास का है, वापस वही जनवरी फरवरी मार्च। तो इस प्रकार ये सृष्टि खेल जो है, ये सृष्टि का चक्र भी 5000 वर्ष का है। प्रति 5000 वर्ष के बाद ये चक्र रिपीट होता है, इसलिए हर 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि का खेल वापस रिपीट होता है। ये बात गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखी हुई है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। जो बना हुआ खेल है वो ही बन रहा है, नया कुछ भी नहीं है। चिंता ताकि कीजिए अनहोनी होई, कोई अनहोनी हो तो चिंता करे, जो हुआ था वो ही होना है तो चिंता क्यों करना है। इसलिए कहते हैं नथिंग इज न्यू। गीता में भी ये बात बताई है, उसमें कहा है हे अर्जुन तुम हम और ये सब राजाएं पहले भी थे अभी भी हैं, और संसार चक्र का ऐसा कोई काल नहीं जब तुम हम और ये ना हो। कहने का भावार्थ 5000 वर्ष के बाद ये साइकिल रिपीट होता है। तभी गीता में ये शब्द है कि जब जब धर्म ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब माना पहले भी हुई थी तब भी आया था, फिर जब होती है तब फिर मैं आता हूँ, फिर जब होगी तब भी आऊंगा। ये साइकिल है, और ज्योतिष विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है, मानता है। देखो ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, अपनी हस्त रेखाएं दिखाते हैं, जन्म पत्री दिखाते हैं और पूछते हैं ना कि देखो मेरे नसीब में क्या लिखा है। तो ज्योतिष बताते हैं कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा। अब आप बताइए इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि जरूर ये घटनाएं पूर्व निश्चित है, तब तो ज्योतिष बताते हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा। अगर ये घटनाएं पूर्व निश्चित ना हो तो ज्योतिष विज्ञान भी नहीं हो सकता है। वो हद के ज्योतिष है, मनुष्य ज्योतिष है, उनका लिमिटेड नॉलेज है, वो लिमिटेड बातें बताते हैं। परमात्मा बेहद का ज्योतिष है, वो ज्ञान का सागर है, संसार के आदि मध्य अंत को जानता है, इसलिए पूरे संसार चक्र के लिए वो बताते हैं कि हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिर से रिपीट होता है। पर चूंकि व्यक्तिगत रूप से हमें मालूम नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, हमारा भाग्य क्या है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं, हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि भविष्य वर्तमान का ही तो रिजल्ट है और हमारे हाथ में वर्तमान है। इसलिए गीता में भी कहा है कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पर रहे। हमारा कर्तव्य है वर्तमान जीवन के हर संकल्प वाणी कर्म को श्रेष्ठ बनाना। भविष्य हमारा अच्छा होना ही है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो इस प्रकार ये सृष्टि का खेल 5000 वर्ष का है, जिसका यादगार भक्ति में स्वस्तिक का चिन्ह हम निकालते। चित्र में आप देखिए स्वस्तिक का चिन्ह निकालते हैं ना सभी, निकालते हैं। हर शुभ कार्य में हम स्वस्तिक निकालते हैं, पर हमें पता नहीं है कि ये चिन्ह हम क्यों निकालते हैं। इस प्रतीक के पीछे ज्ञान क्या है वो हमें नहीं पता है। परमात्मा आकर हमें ये बताते हैं कि ये स्वस्तिक सृष्टि चक्र का प्रतीक है। 5000 वर्ष का साइकिल 4 युग में विभाजित होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों युगों की आयु समान है 1250 वर्ष। इसलिए हम स्वस्तिक के 4 सरीखे भाग करते हैं, ये 4 युगों का प्रतीक है। प्रकृति जगत का हर साइकिल 4 स्टेज से गुजरता है। आप देखो लाइफ एंड डेथ का साइकिल, बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्धत्व, ये 4 स्टेज से लाइफ साइकिल गुजरता ही है। कोई चाहे ना चाहे, ऐसा नहीं कि मैं बूढ़ा बनूंगा ही नहीं, नहीं, समय के प्रभाव में प्रकृति परिवर्तन का कार्य करती ही है। इसलिए बचपन, युवा, प्रौढ़, वृद्ध अवस्था, लाइफ एंड डेथ का साइकिल ये 4 स्टेज से गुजरता है। डे एंड नाइट का साइकिल देखिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये भी 4 स्टेज से गुजरता है। प्रकृति जगत को देखिए, बसंत बहार आती है, प्रकृति पूरी खेल उठती है, फिर गर्मी, सर्दी, पतझड़, जीरो हो जाती है प्रकृति और पतझड़ के बाद वापस बसंत आती, फिर वापस प्रकृति खेल उठती। तो संसार चक्र का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन। हो रहा है, हर चीज नई से धीरे धीरे पुरानी होती है और फिर टूट फूट कर वापस नहीं बनती है। चित्र में आप देखिए स्वस्तिक का हाथ सतयुग में राइट साइड दिखाए, जो शुभ की निशानी है कि सतयुग में शुभ ही शुभ है, क्योंकि पुरुष हम आत्माएं और प्रकृति पांच तत्व दोनों सत्य स्थिति में है, इसलिए उस युग को सतयुग कहते हैं। वो ही स्वर्ग, उसे ही वैकुंठ कहते हैं। ये संसार ही सतयुग में स्वर्ग था, हिंदू भाई बहने उसे स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं, मुस्लिम भाई बहने उसे जन्नत बहिष्ट कहते हैं, क्रिश्चियन भाई बहने उसे हेवन पैराडाइज कहते हैं, सिख भाई बहने सचखंड सुखधाम कहते हैं। संसार चक्र का ये फर्स्ट फेज, प्रथम 1250 वर्ष सतयुग कहा जाता है। वहां हम आत्माएं और प्रकृति दोनों सतो प्रधान पवित्र सत्य है। वहां 100% सुख शांति समृद्धि है, सुख ही सुख है। जन्म बाय जन्म हम इस सुख की प्रारब्ध को भोगते हैं और परिवर्तन को प्राप्त होते जाते हैं। इसलिए आप देखिए त्रेता युग में स्वस्तिक का हाथ राइट साइड से नीचे बताया है, माना त्रेता युग में भी ये 1250 वर्ष का युग है, वहां भी हम राइटियस है, पवित्र है, सत्य ही है, पर परसेंटेज डाउन होती, परसेंटेज डाउन होती। जैसे कोई चीज हम खरीदते हैं नई, तो वो 100% न्यू है, पर 10 दिन भी यूज करते हैं तो उतना परसेंट उसकी चमक दमक कम हो जाती है। चीज बिगड़ी नहीं है, पुरानी नहीं हुई है, खराब नहीं हुई है, नई ही है, पर उसकी न्यूनेस में कुछ परसेंट कम हो जाता है। तो त्रेता युग माना वहां भी हम पवित्र है, सत्य है, सुखी है, पर सतयुग की कंपैरिजन में हम कहें तो सतयुग स्वर्ग है, त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। तो दो युग संसार चक्र के, दो युग 2500 वर्ष सुख शांति पवित्रता और सत्यता के युग है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। त्रेता के अंत के साथ हमारे सत्कर्मों की प्रारब्ध समाप्त होती है, और द्वापर युग में आप देखिए स्वस्तिक का हाथ लेफ्ट साइड जाता है, जो अशुभ की निशानी है, कि हम अपने द्वापर युग से हम अपने सत्य आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं, खुद को शरीर समझते हैं, देहभान में आते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार द्वापर युग से हम वाम मार्ग में जाते हैं, विकारों के मार्ग पर जाते हैं, दुख शांति की शुरुआत होती है और धीरे 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 स्वस्ति का हाथ कलयुग में आप देखिए लेफ्ट साइड से ऊपर जाता है, माना अशुभ की वृद्धि होती है। यहाँ हम आत्माएं बिल्कुल पतित दुखी बन जाते हैं, जिसको वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि घोर कलयुग आज हो चुका है। यही नरक है, कलयुग को ही नरक जन्म कहा जाता है। कोई स्वर्ग आसमान में और नरक कोई पाताल में नहीं है। देवताएं कोई काल्पनिक नहीं है, असुर कोई अलग योनि के प्राणी नहीं है। हम मनुष्य आत्माएं ही जब सत्य और दिव्य होते हैं तो हम ही देवता, संसार ही स्वर्ग होता है। जब हम पवित्रता और दैवी गुण गवा देते हैं, हम साधारण मनुष्य बन जाते हैं। और जब हमारे अंदर विषय विकार आ जाते हैं, अवगुण बुराई व्यसन दूषण आ जाते हैं, तो कलयुग के अंत समय हम ही असुर जैसे हो जाते हैं और संसार नरक बन जाता है। तो विश्व का वर्तमान हम सब देख रहे हैं कि आज घोर कलयुग अति धर्म ग्लानी हो चुकी है। सर्वत्र हम क्या देख रहे हैं? पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार ही देख रहे हैं। ये कलयुग अंत की निशानियां हैं। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इस वर्ल्ड साइकिल में अभी जो समय चल रहा है वो कौन सा समय चल रहा है। आप सबको निमंत्रण देकर यहाँ क्यों बुलाया गया है? भाइयों और बहनों, हमें यही सत्य आप सबको बताना है कि वर्ल्ड साइकिल में वर्तमान समय जो चल रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय चल रहा है, वो है कलयुग का अंत, सतयुग आदि का संधि काल, संगम युग चल रहा है। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और हम कलियुगी पतित मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान और योग की शिक्षा देकर हमें पतित से पावन पवित्र योगी बनाते हैं। ये ही पवित्र योगी भाई बहने सतयुग में जाने के योग्य बनते हैं, देवी देवता पद को प्राप्त करते हैं। भाइयों और बहनों, ये सृष्टि महापरिवर्तन का समय है। स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आए हैं और ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान दे रहे हैं, और वही सत्य ज्ञान आप दो दिन से सुन रहे हैं। ये कोई हम ब्रह्मा कुमारियों या ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है। ये आप हम सबके पिता परमात्मा का सत्य ज्ञान है, उसी का सार आप सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस विश्व परिवर्तन की, महापरिवर्तन की वेला के समय परमात्मा के आदेश पर जो कलियुगी भाई बहने अपने वर्तमान जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, वे ही आने वाले सतयुग के अधिकारी बनेंगे। परमात्मा का विश्व की सभी आत्माओं के लिए ये दिव्य संदेश है कि पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। जो अभी पवित्र बनेंगे वे ही सतयुग की पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो मैं चाहूंगी आप में से कौन कौन बनना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ। परमात्मा हमें महान बनने का संदेश देते, हम बहने परमात्मा का दिव्य संदेश देते हैं, पर इस सत्य को न जानने के कारण लोग ब्रह्मा कुमारियों के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं, काफी भ्रमणाएं रखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां घरबार छुड़ाते। हम घरबार नहीं छुड़ाते हैं, हम विषय विकार छुड़ाते हैं। छोड़ने की चीज दुनिया नहीं है, आसक्ति विषय विकार है, ये परमात्मा का संदेश है। इस ज्ञान को समझने वाले अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, महान बनाते हैं, यहां उनके जीवन में परिवर्तन आता है। तो लोग कहने लगते हैं कि वहां जाते हैं तो बदल जाते, जादू लग जाता है। वहां जाएंगे, कई डरते हैं आने के लिए कि वहां जाएंगे तो सफेद कपड़े पहन लेंगे, दुनिया छोड़ देंगे। दुनिया नहीं छोड़ना है, हम भी इतना सेवा का संसार लेके बैठे हैं, हम कैसे छुड़ाएंगे? हम सही कर्म करना सिखलाते हैं, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया कि लोगों की भ्रांतियां सुनते हुए भी आप हिम्मत करके यहां पहुंच गए। आप शक्तिशाली आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, आप अच्छी तरह से ज्ञान योग को स्टडी करें, विद्यालय को विजिट करें, ताकि वहां जाकर सबको राइट ओपिनियन दे सकें कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारियां क्या काम करती है। कोई पतित से पावन बन जाए, असुर से देव बन जाए, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन जाए, ऐसा जादू तो अच्छा है कि नहीं है? वो तो सबको लगना चाहिए। पर मैंने देखा कईयों ने हाथ नहीं उठाए, अंदर डरते हैं, अंदर डरते हैं, सोचते हैं कि हम हाथ उठाएंगे और फिर नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए हाथ नहीं उठाए। पर आप कमजोर क्यों सोचते हो? पहला ही संकल्प कमजोर क्यों करते? अच्छा बनने की बात है, श्रेष्ठ बनने की बात है। मैं आपको कहूं कि आप भ्रष्टाचारी बनो, गुंडे लोफर बनो तो आप हाथ ना उठाओ, पर ये तो देवता बनने की बात है, इसमें क्या सोचना है? दोनों हाथ उठाओ, क्योंकि ये तो महान बनना है ना। बहुत अच्छे, जितना जो करेगा भाइयों और बहनों, भगवान कभी भी किसी को श्राप नहीं देते हैं, वो कभी भी कोपायमान नहीं होता है। ये मनुष्यों ने डर पैदा किए हैं, परमात्मा प्यार का सागर है, सुखदाता है, कल्याणकारी। हम जितनी उनकी आज्ञा मानेंगे उतना हमारा कल्याण होगा, नुकसान की तो बात ही नहीं है। आप 5% करेंगे, 5% प्राप्ति होगी। जो जितना करेगा, जो जिस युग के लायक बनेगा, वो उस युग में आएगा। पर अभी ये चूज करना है कि हमें किस युग के लायक बनना है। जो सतयुग के लायक बनेंगे वो सतयुग में आएंगे, जो त्रेता के योग्य बनेंगे त्रेता में आएंगे, जो द्वापर के योग्य बनेंगे वो द्वापर में आएंगे, जिनको कलयुग ही अच्छा लगता है वो कलयुग में आएंगे। मैं समझती हूँ कि आप इस सत्य पवित्र स्थान पर आए हैं, जरूर आपको सतयुग ही प्यारा है। सृष्टि खेल की तुलना हम एक फिल्म के साथ, ड्रामा के साथ कर सकते हैं, बल्कि हम करते हैं। कहते हैं वर्ल्ड ड्रामा है, सृष्टि रंगमंच है, सूर्य चांद सितारे इसकी रोशनी है। हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स है, शरीर हमारी ड्रेस है, वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। ये रोल्स है जो हम प्ले कर रहे हैं, पर इस वर्ल्ड ड्रामा में शरीर रूपी ड्रेस पहनकर वैरायटी पात्र बजाते बजाते कुछ भूले हम आत्माओं ने की, जिसके कारण सतयुगी खेल बिगड़ गया, कलयुगी बन गया। सबसे पहली भूल कौन सी की? कोई एक्टर, फिल्म जगत का कोई एक्टर, मान लो अमिताभ बच्चन, जिसने कुली का रोल प्ले किया था, तो आप ऐसा कहेंगे अमिताभ बच्चन कुली है, ऐसा आप कहेंगे? कहेंगे नहीं। अमिताभ बच्चन अलग शख्सियत है, फिल्म में कुली का पार्ट प्ले किया। एक हीरो एक्टर कोई फिल्म में राजा बनता है, दूसरी फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, तीसरी फिल्म में पागल बनता है, ये उनके रोल है। वो अपने आप को अगर समझने लगे कि मैं राजा हूं, घर जाके कहे कि मैं राजा हूं, तो घर वाले क्या कहे कि भाई तुम फिल्म में राजा थे, घर में नहीं, हाँ? ये तुम्हारा रोल था, आप तो इस घर के एक मेंबर है। तो इस प्रकार हमने इस वर्ल्ड ड्रामा में आत्माओं ने पार्ट प्ले करते करते हम अपने आत्मा स्वरूप को भूल गए और जो रोल मिला वो ही हम अपने आप को समझने लगे हैं कि मैं इनका पति हूँ, मैं इनकी सास हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष। ये गलत है, ये ड्रेस है। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर ड्रेस है। हम ये ड्रेस नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा शक्ति है। सुबह से लेकर रात तक वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। अभी अभी बच्चे के आगे माँ के रोल में है, पति के आगे पत्नी के रोल में है, माँ बाप के आगे बच्ची के रोल में है, ऑफिस में आप एक एम्प्लॉई के रोल में है, समाज में एक नागरिक के रोल में है। ये रोल्स है, आप ये नहीं है, आप आत्मा है और इतने रोल आप प्ले करते। दूसरी दो भूल इस वर्ल्ड ड्रामा में हम मनुष्यात्माओं ने की वो कौन सी है कि हर एक्टर का अपना अपना रोल होता है। हर एक्टर का कार्य क्या है कि उसे जो रोल मिलता है वो अच्छी तरह से प्ले कर, अपने रोल पर ध्यान देना, बेस्ट एक्शन करना, ये हर एक्टर का कार्य है। दूसरे एक्टर ठीक करते हैं, नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये देखने का कार्य किसका है, किसका है? डायरेक्टर का। एक्टर का नहीं है, डायरेक्टर का। हम सब ने कौन सी भूल की? यही भूल की, खुद के कर्म पर ध्यान देने के बजाय हम दूसरों के कर्म को देखते हैं कि इनके घर में क्या चलता है, इनका बेटा कैसा है, इनकी बहू कैसी है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। हमारा अटेंशन दूसरों पर है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारा अपना ही रोल बिगड़ गया, हमारा अपना ही रोल बिगड़ गया। तीन डांसर है, डांस कर रहे, एक डांसर खुद के ताल पर ध्यान देने के बजाय दूसरी दो के ताल पर ध्यान देती है कि इसका ताल मिलता है कि नहीं, इसका ताल मिलता है कि नहीं, रिजल्ट क्या होगा? उनका अपना डांस बिगड़ जाएगा। समझ गए हमारा जीवन क्यों बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया? खुद के कर्म पर ध्यान देने के बजाय दूसरों पर ध्यान देते, इसलिए हमारा जीवन बिगड़ गया, ये ड्रामा पूरा बिगड़ गया। इसलिए अब शिव बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस बनो, स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो, पर दर्शन पर चिंतन छोड़ो, खुद की उन्नति करो। और दूसरी बात, एक दृश्य में मान लो चार एक्टर का रोल है, डायरेक्टर के कहे अनुसार, वैसे भी हर एक्टर का रोल अलग अलग अपना अपना होता है, एक एक्टर को रोने का पार्ट प्ले करना है, उस समय दूसरे को हंसना है, तीसरे को चुप होकर देखना है, चौथे को सलाह देनी है, चारों एक्टर क्या करेंगे, अपना अपना रोल प्ले करेंगे ना। पर अगर एक एक्टर को रोता हुआ देख दूसरा भी रोने लगे, तीसरा भी रोने लगे, चौथा भी रोने लगे, तो क्या होगा? ड्रामा बिगड़ जाएगा ना। हम सब ने यही किया है, तालियां बजा रहे हैं, हम सब ने ये भूल की है। एक गुस्सा करता है, उसको देखकर हम क्या कहते हैं, उसने गुस्सा किया ना, तब मैंने गुस्सा किया, उसने दो बोला तब मैंने चार बोला। सब भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। यही कारण है आज पूरा ड्रामा बिगड़ चुका है। इसलिए डायरेक्टर शिव बाबा आए हैं, हमें सारा सत्य ज्ञान बता रहे हैं कि क्यों सतयुग कलयुग बन गए। अब शिव बाबा कहते हैं कि ये नाटक पूरा हुआ है, ये साइकिल पूरा हो रहा है। अब नाटक पूरा होता है, शो पूरा होता है, तो एक्टर्स क्या करते, क्या करते? ड्रेस, ड्रामा की ड्रेस उतार देते हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने अपने वापस घर जाते हैं। अब ये नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस घर जाना है। भाई ने कहा अब वाइंड अप करना है, समेटना है। ये शरीर रूपी ड्रेस हमने इस वर्ल्ड ड्रामा के लिए ली थी, इसे यहां ही छोड़नी है। हमें अपने ओरिजिनल, हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, क्या है? आप लेसन चल चुका है, हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? आत्मा स्वरूप। पर आत्मा का भी स्वरूप कौन सा? शुद्ध, पवित्र, शांत, सत्य, आनंद, प्रेम स्वरूप, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है। हमें फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आना है और शरीर रूपी ड्रेस यहाँ छोड़कर हम आत्माओं को वापस घर जाना है। पसंद है? पसंद है? हाँ। पिता परमात्मा वापस घर ले जाने के लिए आया है, चलना है ना? कि यहीं बैठे रहना, चलना है ना? दुखी तो हो ही गए हैं, सबके बीच में नहीं कहते होंगे पर मन में तो कहते ही है कि इससे तो चले जाए तो अच्छा है। हर कोई कहता है, पर शर्त है, दो शर्त है। एक कंडीशन आप जानते हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, समझ गए ना? इसलिए वाइंड अप। जो जरूरी नहीं है डिटैच हो जाइए, जो जरूरी है उससे प्योर डिवाइन बना लीजिए। साथ क्या जाना है, साथ में क्या जाता है, पहले लेसन में समझा है, कर्मों का हिसाब, उनको शुद्ध और सत्य बना लीजिए। और दूसरी कंडीशन है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, पर पवित्र आए थे, पवित्र बनकर जाना है। तो ये हैं सृष्टि चक्र का ज्ञान, समय के सिग्नल को बुद्धि में रखते हुए, क्योंकि अब कलयुग खत्म होना है, सतयुगी पावन दुनिया आनी है, इसलिए विनाश कब होगा ये न सोचना है न पूछना है, पर सतयुगी दुनिया आनी है तो उसके योग्य कैसे बनना है, उस पुरुषार्थ में हमें लग जाना है, उस पुरुषार्थ में लग जाना है। तो बहुत सुंदर बाबा के संदेश का गीत हम सुनेंगे। लेसन के अंत में अपना लक्ष्य पक्का कर लेंगे कि अब बाकी जीवन को, इस जन्म के बाकी जीवन को महान बनाना है, कल्याणकारी बनाना है, और उसके लिए शिव बाबा को आज आप अपना संकल्प बताना, बाबा से प्रॉमिस करना, ताकि बाबा की शक्ति आपके साथ रहे और बाकी जीवन को हम शिव बाबा की आज्ञा पर पवित्र और श्रेष्ठ बना सके। ओम शांति। गीत ध्यान से सुनेंगे, शिव बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं।
पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ।